गाथा में आप सुन रहे हैं क्रिस्टीना की लिखी कहानी साजिश। जेनिफर जब सुबह नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली तो वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसका जैसे ही मैक से सामना हुआ तो उसने उसे बेतहाशा अपनी बाहों में भर लिया। उसने जेनिफर को कई सारे किस कर डाले। जेनिफर हौले से उसकी आगोश से अलग हुई और शोकी से मुस्कुराती हुई किचन की तरफ चली गई। जब वह वापस आई तो उसके हाथों में कॉफी से भरे दो मग थे। मैक्स ने उसके गालों में हल्की सी चुटकी ली और कॉफी का मग लेकर टेबल पर रख दिया। उसने अपने चेहरे के सामने अखबार कर लिया और उसकी आड़ में बैठकर जेनिफर को कत्ल करने का आसान और सुरक्षित तरीका सोचने लगा। वो कोई ऐसा तरीका आजमाना चाहता था जिससे उस पर शक भी ना हो और उसका काम भी बन जाए। जेनिफर और मैक्स की शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे। मैक्स ने जेनिफर की दौलत देखकर उससे शादी की थी। अब मैक्स को लगता था कि उसकी बीवी ने इन 2 सालों में अपनी दौलत के बदले उससे काफ़ी कीमत वसूल कर ली है। वो चाहता था कि अपनी बाकी बची दौलत उसके लिए छोड़कर अब जेनिफर को मर जाना चाहिए। तभी उसके मन में एलिना का ख्याल आ गया। वो सोचने लगा कि आखिर एलिना भी उसका कब तक इंतज़ार करेगी। वो खुद भी अब उससे ज़्यादा दिन दूर नहीं रहना चाहता था। वो अखबार के पीछे धीरे से बुदबुदाया, बहुत हुआ, अब उसे मेरे लिए अपनी सारी दौलत छोड़कर अब जाना ही होगा। मैं और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी उसकी सोच को ब्रेक लग गया। उसे जेनिफर की आवाज सुनाई दी। वो उसे बता रही थी, डार्लिंग, हमारी बालकनी के ठीक नीचे एक बहुत खूबसूरत गुलाब बस खिलने ही वाला है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। शाम होने तक वो पूरा खिल जाएगा, फिर मैं उसे आज की पार्टी के लिए अपने बालों में लगाऊंगी। डार्लिंग, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, याद है ना? गुलाब? ओ हाँ, मैक्स ने चौंकते हुए कहा। हाँ मुझे याद है। उसने अपने चेहरे के सामने से अखबार हटाते हुए जेनिफर की आंखों में शरारत से झांकते हुए कहा, जब एक गुलाब अपने बालों में गुलाब लगाएगा तो नज़ारा बहुत दिलकश होगा। उसकी बात सुनकर जेनिफर मुस्कुरा दी। गुलाब का नाम सुनते ही मैक्स के मन में तुरंत एक योजना ने जन्म लिया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं शाम को जेनिफर को बालकनी तक लेकर जाऊंगा, फिर मैं उससे बहुत प्यार से नीचे खिले गुलाब को देखने के लिए कहूंगा और फिर एक धक्का, जरा सा जोर, बस सब कुछ खत्म। उसने कल्पना की। नीचे, बहुत नीचे मेजों और रंगीन छतरियों के बीच वो एक छोटी बेमतलब की गठरी बनी पड़ी होगी। फिर मैं एक जवान गमजदा पति की तरह कहूंगा। उसके कान में शब्द गूंजने लगे, हाय मेरी प्यारी बीवी, वो बालकनी से इस खूबसूरत गुलाब को देखने के लिए झुकी होगी और फिर वो अखबार के पीछे मन ही मन मुस्कुराया। वो जानता था कि शक उसी पर किया जाएगा, क्योंकि बीवी की सारी दौलत का अकेला वारिस वही था। लेकिन उसे अपनी बीवी को ढकेलते हुए कोई नहीं देख सकेगा। सड़क पर से ये देखना नामुमकिन है कि वास्तव में हुआ क्या था, इसलिए वो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकता। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी कि कोई क्या सोचेगा और उसकी पीठ पीछे क्या कहेगा। उसे इस बात का बहुत दुख रहता था कि एलिना एक सस्ते से रिहायशी इलाके में रह रही थी। वैसे उसकी बीवी जेनिफर बहुत खुले दिल वाली थी। वो उसकी सारी ज़रूरतें बिना किसी बहस के पूरे कर दिया करती थी। तोहफे देने के मामले में भी वो कंजूस नहीं थी, लेकिन जेब खर्च देते वक्त वो कंजूसी दिखा जाती थी। इसीलिए मैक्स अपनी महबूबा एलिना पर खुले दिल से खर्च नहीं कर पाता था। एलिना का नाम जहन में आते ही उसे ख्याल आया कि आज 11 बजे उसने एलिना से मिलने का वादा किया है, वो इंतजार कर रही होगी, इसलिए उसे उठ जाना चाहिए। घर से बाहर निकलने के लिए बहाना क्या हो? हाँ, हेयर ड्रेसर और शॉपिंग का बहाना ठीक रहेगा। आखिर उसे अपनी बीवी को शादी की सालगिरह पर कोई तोहफा भी तो देना है। वो इस बहाने का इस्तेमाल करने ही वाला था कि उसकी बीवी जेनिफर बोल पड़ी, इस वक्त अगर तुम कहीं जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं होटल सियाना में डांसिंग क्लासेस के लिए जा रही हूँ, लंच के लिए भी नहीं आ सकूंगी। तुम और ये तुम्हारी डांसिंग क्लासेस, मैं सब जानता हूँ, मैक्स ने उसे छेड़ते हुए कहा। मुझे यकीन है कि तुम उस खूबसूरत डांसर गैरी से प्यार करने लगी हो, आजकल तुम उसकी ही डांस पार्टनर हो ना। डियर, मैं तो तुम्हारे साथ ही डांस करती थी, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ ही डांस करना पसंद भी है, लेकिन शादी के बाद से तो तुमने डांस करना ही छोड़ दिया है। आहा, क्या दिन थे वो। उसने आह भर कर छत की तरफ देखा और फिर जेनिफर की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, क्या तुम्हें एल्बर्ट के यहाँ की वो रात याद है जब हमने एक साथ ब्लू डेनूब की धुन पर डांस किया था? ये कहते हुए वो सोचने लगा, अब वो ज्यादा वक्त उसके साथ नहीं रहेगी, इसलिए थोड़ा जज्बाती होने में कोई हर्ज नहीं है। जेनिफर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और मुझे ये भी याद है कि उस रात तुमने अपना इनाम लेने से इनकार कर दिया था। तुमने कहा था कि हम दोनों के दरमियान रुपए का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर मैंने तुम्हारा हिसाब साफ करने के लिए तुम्हें सोने की एक घड़ी दी थी, याद है ना डार्लिंग तुम्हें? दोनों ने हल्की सी आह भरी और अलग अलग रवाना हो गए। वहां से मैक्स सीधे एलिना के पास गया। वह दोनों इस वक्त एक स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए थे। उसने एलिना का हाथ अपने हाथों में ले रखा था और वो उसे जेनिफर को कत्ल करने की अपनी प्लानिंग बता रहा था। उधर होटल सियाना में जेनिफर गैरी की बाहों में सिमटी हुई डांस कर रही थी। वो अपने लाल रंगे हुए बालों वाले सर को म्यूजिक के साथ हिला रही थी। वो बेहद गलत सुरों में गैरी के कानों में गुनगुना रही थी, नॉटी गर्ल। गैरी ने उसकी कमर को अपने बाजू में कसते हुए कहा, अपना ध्यान कदमों पे रखो और म्यूजिक की परवाह ना करो, बस अपने पैरों के स्टेप के बारे में सोचो। तुम इस वक्त मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हो गैरी, जब मैं तुम्हारे साथ डांस कर रही हूं तो मुझे होश ही कब रहता है सही और गलत का। चलो अब कुछ देर रिलैक्स करते हैं, गैरी ने कहा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने रात की बात का बुरा तो नहीं माना जब मैंने तुम्हारे पैसे लेने से इनकार कर दिया था? इसकी वजह यह थी कि मैं इस ख्याल से भी नफरत करता हूं कि हमारी दोस्ती के बीच पैसा आए। तुमने पैसे नहीं लिए तो क्या मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूं? देखो, मैं तुम्हारे लिए प्लेटिनम की एक खूबसूरत घड़ी लाई हूं और साथ में ढेर सारे किसेस। इसके साथ ही जेनिफर ने गैरी के चेहरे को अपने चेहरे से ढक लिया। शाम होने से पहले ही मैक्स घर लौट आया। वो बीवी के लिए हीरे का एक खूबसूरत मगर सेकेंड हैंड क्लिप गिफ्ट में देने के लिए लाया था। मैक्स के लिए इतना खर्च करना जरा मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत कर ही डाली थी। आखिर ये उसकी तरफ से बीवी को आखिरी तोहफा था और फिर वो ये तोहफा जेनिफर की मौत के बाद एलिना को दे सकता था। यकीनन जो आदमी अपनी बीवी के लिए शादी की सालगिरह पर इतना कीमती गिफ्ट लाया हो, उस पर भला अपनी बीवी को कत्ल करने का शक कौन करेगा? जेनिफर यह तोहफा पाकर वाकई बहुत खुश हुई। वो नीचे पार्टी में जाने को बिल्कुल तैयार थी। आओ डार्लिंग, तुम्हें वो खूबसूरत गुलाब दिखाती हूँ। इस वक्त वो पूरा खिल गया होगा। ऐसा लगता है कि कुदरत ने उसे इसीलिए खिलाया है कि मैं इस पार्टी में इसे अपने बालों में सजाकर शिरकत करूं। जेनिफर ने पति का हाथ पकड़कर बालकनी की तरफ ले जाते हुए कहा। मैक्स के दिल की धड़कन थोड़ा बढ़ गई। उसने सोचा कि कुदरत आज उस पर मेहरबान है। जेनिफर खुद ही उसे बालकनी की तरफ ले जा रही है। सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा था। वो दोनों बालकनी पर गए और झुककर नीचे देखने लगे। अचानक ही एक जोर का धक्का, फिर एक भयानक चीख और सब कुछ खत्म। नीचे, बहुत नीचे, छोटे छोटे से आदमी नन्नी छतरियों के नीचे से मुड़ी उतुड़ी इसी लाश की तरफ दौड़ पड़े। ओह माय गॉड, कितना भयानक हादसा है। एम्बुलेंस बुलाओ, पुलिस को इन्फॉर्म करो, कोई लाश के ऊपर मिचपोशी डाल दो। थोड़ी ही देर बाद पुलिस आ गई। तोहफे पर परेशान हाल, उलझे बाल और भींची मुट्ठियां लिए हुए, तूफानी रफ्तार से आंसू बहाते हुए उसने आसपास जमा भीड़ को देखा। लोगों ने उसे दिलासा दिया और इस खौफनाक हादसे के बारे में पूछने लगे।
मेरे ख्याल से वो गुलाब देखने के लिए बालकनी से झुके होंगे।
जेनिफर ने हिचकियों के बीच बताना शुरू किया। गाथा में आप सुन रहे थे क्रिस्टीना की लिखी कहानी साजिश। कहानी का संपादन कुमार रहमान का। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया शेफाली कपूर ने।